मंगल करण वीत राग विख्यान नमो ताहि जाते भये अरहंता दिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की
परम पूज्य मुंडा श्री क्षमा सागर जी महाराज जी की जय परम पूज्य मुंडा श्री भव्य सागर जी महाराज जी की मुनि संघ की जय।
आज दस लक्षण का छठवां दिन है। हम सभी लोगों ने पिछले पांच दिनों में पांच बातें सीखी हैं। यदि हमारे जीवन में क्षमा आ जाती है तो हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। यदि हमारे जीवन में मृदुता आ जाती है तो वो मृदुता हमें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है हमारे मन में। यदि हमारे जीवन में सरलता आ जाती है तो हमारी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, हमारी प्रामाणिकता बढ़ जाती है, हम दूसरे के विश्वास करने लायक हो जाते हैं और हमारे भीतर जितना सौक्ष धर्म आता है, जितनी निर्लोभ वृत्ति, जितनी संतोष वृत्ति हमारी होती है, उतने हम पवित्र होते चले जाते हैं। और सच्चाई को जानना, सच्चे होने का प्रयास करना, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में सच्चाई का सम्मान करें और स्वयं भी सच बोलें। इस तरह पांच दिनों में हमने बहुत मेहनत करके अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने का मन बनाया है। आज छठवां दिन है। एक और अपने जीवन में इस दस लक्षण पर्व से संदेश लिया जा सकता है। आचार्य महाराज ने बहुत पहले सन 85 में संयम के दिन शुरुआत करते हुए कहा था, मुझे वो पंक्तियां हमेशा आज के दिन याद आ जाती हैं, अनाश्रिता लता स्वयमेव लीयते विलीयते। जैसे एक लता या बेल अगर किसी वृक्ष का या किसी लकड़ी का सहारा न ले तो अनाश्रिता, बिना सहारे बिना आश्रय के वो जैसे थोड़े ही समय में नष्ट हो जाती है, ऐसे ही हमारा जीवन है। यदि हम अपने जीवन में सहारा नहीं लें सच्चे देवगुरु शास्त्र का और थोड़ा सा बंधन स्वीकार नहीं करें तो हमारा जीवन भी और इस संसार में बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे कि उस बेल को या लता को ऊंचाई छूने के लिए किसी भी वृक्ष या की लकड़ी का सहारा लेती है और माली उसे हल्का सा बंधन भी लगा देता है। लगता यह है कि इस लकड़ी से क्या लाभ होने वाला है और इस बंधन से यह तो हमारी और मुक्ति में बाधक जान पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संयम का बंधन बाधक नहीं है, बल्कि वो हमें ऊंचाइयां देने में मदद करने वाला है। और ये लकड़ी हमें कोई जड़ों को पानी या रस नहीं दे रही है, पर फिर भी हमारी ऊंचाई में वो भी सहायक है। तो सच्ची श्रद्धा के साथ और जो हम अपने जीवन को अनुशासित कर लेते हैं, उसी का नाम संयम है। असल में हमारी आदत पड़ जाती है अपने जीवन को बहुत लापरवाही से जीने की। मेरे ख्याल से हम सब अपने जीवन के बारे में बहुत लापरवाह लोग हैं, जिस किसी तरह जीते हैं, जबकि हम एक साइकिल भी खरीदते हैं, कार तो छोड़िएगा, तब भी हम इतना ध्यान रखते हैं उसको कि कहीं वो टकरा ना जाए, कहीं उसमें खरोंच ना आ जाए, खराब ना हो जाए, इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन हम अपने जीवन की इस गाड़ी में जब यात्रा करते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि मेरे अपने जीवन को कहीं कोई खरोंच ना लग जाए और मेरे जीवन से टकरा कर दूसरे को क्षति ना पहुंचे। यही तो लापरवाही है। अपने इंद्रिय मन का सदुपयोग नहीं करना अपने इंद्रिय मन के प्रति लापरवाही है, अपने जीवन के प्रति लापरवाही है। संयम के मायने हैं अपने को अनुशासित कर लेना, लापरवाही छोड़ देना, इंद्रिय और मन का सदुपयोग करना, इंद्रिय और मन को नियंत्रित कर लेना, ये तो है ही। लेकिन नियंत्रण के मायने ऐसा लगता है जैसे कि आंख पे पट्टी बांध लेंगे तो संयम हो जाएगा, कान में रुई घोंस लेंगे कुछ नहीं सुनेंगे तो संयम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंद्रिय और मन मिले हैं उनका हमें सदुपयोग करना और अपने जीवन को अनुशासित रखना, और इतना ही नहीं, अपने जो खोटे संस्कार हैं उन सबको तोड़ना और अपने आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ाते जाना, यही तो संयम है। टू बी ऑन सेल्फ, अपने आप में स्थिर हो जाना, यह भी संयम है। असल में एक संयम बाहर से स्वीकार किया जाता है, एक अनुशासन बाहर से स्वीकार किया जाता है, और एक अनुशासन भीतर उस बाहर के अनुशासन के चलते प्रकट होता है। एक स्थिति यह होती है संयम पालन करने वाले की कि उसे पाप से बचना मुश्किल होता है, और एक स्थिति यह होती है संयम की चरम अवस्था की फिर पाप करना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में वह स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है। एक स्थिति है जबकि हमें क्रोध और मान और माया और लोभ से बचना मुश्किल होता है, और एक स्थिति वो है कि गुस्सा के सारे कारण मिलने पर भी हमें क्रोध ही नहीं आता। हम कहते हैं हम गुस्सा हो ही नहीं पाते, हम अहंकार कर ही नहीं पाते, हमसे छल कपट होते ही नहीं, हमसे लोभ होते ही नहीं, हमसे किसी को तकलीफ दे पहुंचाने का मन ही नहीं होता। इतना हम सेल्फ सैचुरेटेड या सेल्फ डिटरमिंड हो जाते हैं, ऐसा कह लेंगे। तो ये संयम एक्चुअली सेल्फ डिटरमिनेशन है, सारी लापरवाही छोड़ करके और अपने जीवन को स्वयं अनुशासित कर लेना। एक तो होता है दूसरे के द्वारा लगाया हुआ अनुशासन बंदूक की नोक पर कि यों करना नहीं चाहिए और त्यों करना नहीं चाहिए और ये नहीं करना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए और वो नहीं पीना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है। जो शुरू में अभी परिपक्व नहीं है उनको तो बाहर का अनुशासन भी अनिवार्य है, लेकिन जैसे जैसे ये बाहर का अनुशासन हमारे जीवन को अनुशासित करता चला जाता है तो अपने आप भीतर में और एक अनुशासन जिसको आत्मानुशासन कहते हैं, जिसको आत्मनियंत्रण कहते हैं, वो अपने आप आता चला जाता है, उसी का नाम संयम है। आचार्य भगवंतों ने तो लिखा है कि बद समिधि पालनाए दंड चायन इंद्रिय जड़ेन। वास्तव में तो संयम वो है जो व्रत समिति इनके पालन करने और इंद्रियों को विजय करने में होता है, वही संयम है। पांच पापों से बचना ये व्रत है और मुनि जन अपनी कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें जीवों की हिंसा ना हो इस बात का ध्यान रख के करते हैं। वही उनकी समितियां हैं, दंडक चायन मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति को छोड़ देना, यह भी संयम है और इंद्रिय को जीत लेना या इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यह भी संयम है। अब इस संयम को जो कि इतना कठिन मालूम पड़ता है, अगर किसी से भी त्याग की और संयम की और तप की चर्चा करी जाए तो एकदम ऐसा लगने लगता है कि भैया ये तो बड़ा कठिन काम है और महाराज जी वैराज जी के जिम्मे है, अपने अपने बस का नहीं है। ऐसा एक अपने अंदर शुरू से ऐसी धारणा बन गई और उसके बनाने में भी हमारे अपने लोग ही सहयोगी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसका कारण यही है कि हम अपनी शक्ति से ज्यादा लोगों को संयम लेकर के और तकलीफ पाते देखते हैं तो हम संयम से भयभीत हो जाते हैं, या कि हम बाह्य में लोगों को संयम पालन करते देखते हैं और उनके अंतरंग के परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो हमारा संयम के प्रति जो रुझान है वो कमती हो जाता है। बहुत जिम्मेदारी है, कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन को संयमित बनाता है तो उसके व्यवहार में इतनी मृदुता आ जानी चाहिए कि उससे दूसरे की क्षति ही ना पहुंचे, लेकिन होता यह है कि संयम धारण करने वाले का व्यवहार इतना कटु हो जाता है कि उससे दूसरे को मैसेज नहीं मिलता। ये मैंने बहुत बहुत गौर से देखा है इस चीज को। जब हमारे जीवन में हमने स्वयं संयम ला लिया है तो फिर हमारा फर्ज है कि हमारे आसपास हमारे जीवन से इस तरह का मैसेज कन्वे हो कि दूसरे का भी संयम के प्रति रुझान हो, और हम अपनी शक्ति के अनुसार ही क्यों ना संयम ले, हम अपनी शक्ति से ज्यादा ले लेते हैं तो फिर हम स्वयं भी तकलीफ उठाते हैं, आकुल विकल होते हैं और देखने वाले को लगता है कि जब इतनी आकुलता विकलता हो रही है तो ऐसे संयम को धारण करने से क्या मतलब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संयम बाहर से ग्रहण नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी शक्ति का विचार करके करना चाहिए, और प्रसन्नता उसकी बहुत बड़ी कसौटी है। ऐसा ना हो कि आपने एक उपवास किया और शाम आप ऐसे चेहरे पर उदास और तकलीफ से दिखाई पड़ रहे हैं कि दूसरे को यह मैसेज जा रहा है कि भैया ये अपने बस का नहीं, इतने दुखी हैं, इतने दीनहीन हो रहे हैं। नहीं, मैं अपनी शक्ति के अनुसार अगर संयम धारण करता हूं तो मेरे अंदर जो है उतना ही उत्साह, उतनी उमंग और बढ़ते चली जानी चाहिए, यह चीज भी बहुत आवश्यक है। और संयम हमेशा अपने मन से ग्रहण करने पर ये सारी विपत्तियां आती हैं, संयम हमेशा किसी गुरु के सानिध्य में ही ग्रहण करना चाहिए। वे जानते हैं कि हमारी शक्ति क्या है और गुरुओं का भी फर्ज है कि वे सामने वाले की शक्ति को पहचान करके ही और संयम धारण करवाएं। जैसे कि एक मां अपने छोटे से बेटे को जिद करने पर भी दूध में मलाई डाल के नहीं देती, कहती यही पियो, पानी मिला हुआ, अगर मलाई की जिद करोगे तो पानी मिला के देऊंगी, तुम अभी पचा ही नहीं पाते और तुमने तो बड़े भैया को तो मलाई डाल के दिया था। तो बड़े भैया को बहुत सारे काम है और दिन भर वो उसमें लगे रहते हैं इसलिए उनको पचाने की ताकत है, तुम तो अभी जो है बैठे रहते हो, साल भर के हुए नहीं हो और कह रहे हो कि हम तो दूध में मलाई डाल करके पिएंगे। नहीं, पानी डाल करके पियो, वही पचा पाओ। ऐसा जो है जैसे मां अपने बेटे के लिए जानती है कि कितनी सामर्थ्य है, उसे क्या देना है, इसी तरह गुरु भी जानते हैं कि सामने जो आया है भव्य जीव है, उसके कल्याण के लिए मांगता तो बहुत है लेकिन देना तो बहुत थोड़ा सा ही है। हां, उपवास मांगा है तो आज कम से कम एक आसन तो दे ही देऊंगा, उपवास तो न देऊंगा, आपकी सामर्थ्य देखूंगा शाम तक, फिर उसके बाद अगले बार देखेंगे। हम इंदौर में चतुर्मास कर रहे थे और वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी और इंटरेस्टेड हो गए। छोटे बच्चों से मेरा मतलब है कि मेरे लिए तो छोटे बच्चे वो ही, कॉलेज के स्टूडेंट भी छोटे बच्चे हैं। हाँ, मतलब दो चार पांच साल वाले नहीं, 10-20, 15 और 20 साल के बच्चे लोग। उन्होंने कहा कि हम भी उपवास करना चाहते हैं, जब आप अपने इतने सड़े शरीर से कर सकते तो हम नहीं कर सकते। बहुत सीधी सी बात है, मतलब जब आप इतनी कमजोरी के बावजूद भी आप एकासन में भी शाम को हमको उतनी ही प्रसन्नता से पेश आते हैं और दूसरे दिन सुबह भी आप वैसे ही उत्साह के साथ और सारा काम करते हैं, जब एक बार खा करके तो हम आज नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला, और हमारा तो शरीर आपसे भी ज्यादा मजबूत है, ऐसा सोच करके और कुछ नहीं। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा सोच है, लेकिन अभी ठहरो, शाम तक के लिए नियम ले लो। तो क्या शाम को खा लेंगे? मैंने कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, शाम तक नहीं खाएंगे, बस 4 बजे मेरे से मिलना, क्योंकि 4 बजे बैठते हैं अपन और 4 बजे चर्चा करेंगे, उसी समय मैं देख लूंगा कि आगे देना है कि नहीं देना, और 4 बजे बढ़िया से कॉलेज वाले रेंट करके और मेरे पास आने का रोज का नियम था, आके बैठ गए और वही जो डिस्कशन था, ग्रुप डिस्कशन, वो ग्रुप डिस्कशन भी बाकायदे चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसमें मैंने देखा कि कहीं इनके भीतर कोई शिथिलता नहीं है, फिर भी जाओ शाम को दूध और पानी तो लेना ही है। नहीं महाराज, मेरे से तो बिना उसके भी चल जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और शाम तक इतने बढ़िया से निकल गया। नहीं, आज तो लेना ही है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपके लिए कायोत्सर्ग किया है, अगर आप उसमें शिथिलता करेंगे तो उसका 1/6 बेनिफिट भी और लॉस भी मेरे मत्थे जाता है। ये नहीं समझना कि व्रत लेने वाले को व्रत देने वाला जो है और दे दिया और आपका व्रत बढ़िया से हो गया तो लाभ तो हमें मिल गया, और अगर आपने उसमें कमी रखी है तो उसकी क्षति भी हमें, हमें उसकी भी जिम्मेदारी हमारी मानी जाएगी। नहीं, आज आपको दूध और पानी लेना है, ठीक, जैसी आपकी आज्ञा, हमें तो वो स्वीकार है। ये परीक्षा भी है कि आपने श्रद्धा पूर्वक और शास्त्र की विधि के अनुसार संयम धारण किया है या अहंकार वश, ये ध्यान रखना। दूसरे ने आज तक जैसा नहीं किया, मैं वैसा करके बता सकता हूं, ऐसे भावना से संयम धारण किया जाएगा वो कोई काम का संयम नहीं, शास्त्र की विधि और गुरु के बताए अनुसार ही। हम लोग जब आचार्य से उपवास लेते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि मैं उपवास करना चाहता हूं, ये पूछते हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो, मेरी भावना है कल उपवास करने की, यदि आप आज्ञा देंगे तो, नहीं तो कोई आवश्यकता। हां, ये नहीं है कि उनको बताना है कि हम कल उपवास कर रहे हैं तो कर लो ना, हमको काय को बता रहे हैं। नहीं, आपकी यदि आज्ञा हो तो कल उपवास करने का मेरा मन है, ठीक है, आशीर्वाद। और कई बार गुरु देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों को संयम और तप करवाना है तो वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं। एक बार की घटना है, सन 1976-77 की, जब तो मैं गृहस्थ में ही था और आचार्य महाराज के चरणों में दर्शन करने जाया करता था। उस समय संघ में हमारे से बड़े महाराज छुडला कोरेला की थे, मेरे सामने ही आचार्य श्री के संघ में मुनि दीक्षा पहली हुई थी। उसके पहले जो छुडलक जी अलग जी थे, समय सागर जी महाराज थे, योग सागर जी महाराज थे और नियम सागर जी महाराज थे। ये तीनों महाराज हमसे बड़े हैं, आज भी हैं बड़े और हमेशा से बड़े ही मानता हूं मैं उनको। तो नियम सागर जी महाराज उपवास कम करते थे, वो अमोदरी खूब कर लेते थे। अमोदरी भी कठिन है बहुत, उपवास से ज्यादा कठिन अमोदरी तप है। एक ग्रास खाकर के वापिस आ जाना, सारे क्षुधा वेदनी की उदीर्णा हो जाती है और सिर्फ एक ग्रास लिया और वापस आ गए। उपवास में तो ऐसा है कि ना देखा ना भौंके, गई नहीं है चौका में खाने की कोई बात ही नहीं, और सारा सामान सामने रखा और उसमें से एक ग्रास लेकर के और आ जाना और सहन करना दिन भर, जैसे कि गर्म तवे पर एक बूंद पानी की गिर जाए तो छन्न हो जाती, वैसे एक ग्रास अगर भीतर चला जाए तो सारी क्षुधा की उदीर्णा होती है और फिर इतनी अधिक मात्रा में सहन करना पड़ती है क्षुधा। वो उमोदर तप है, वो उनको अच्छी साधना थी उसकी, लेकिन उपवास बहुत कम करते थे। तो अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास लिया जाता था या उमोदर लिया जाता था, वो क्रम चलता था। तो समय सागर जी का सबसे पहले नंबर तो उनको उन्होंने कहा, वो हमेशा उपवास करते थे, तो उन्होंने कहा महाराज मैं कल उपवास करना चाहता हूं आपकी आज्ञा, तो बोलते तुम उमोदर कर लो। अरे इनको उपवास नहीं दे रहे मतलब, तो नियम सागर जी ने कहा अपन तो वैसे ही नहीं करते उपवास, अपन काय को मांगो उपवास, उनोदर तो अपन करते हैं, अपन भी मांग लो। तो महाराज कल मैं उनोदर करना चाहता हूं, उपवास कर लो कल। गुरु की आज्ञा से ही संयम और तप धारण किया जाए, शास्त्र की विधि के अनुसार किया जाए, मतलब हर प्रकार से अपने को कसौटी पर कसना, सेल्फ डिटरमिनेशन। हम जिस चीज में अभ्यस्त हो गए हैं, उसके अलावा और भी उपाय हैं, उन सब को भी करके देखना, यही संयम की विधि है। अनुशासन, विनोबा से पूछते थे कि संयम किसे कहते हैं, तो वो कहते थे अनुशासन को संयम कहते हैं। तो बताओ तो क्या अनुशासन है? मैंने शायद आपको ये बात पहले भी कही थी, और बहुत आसान सा तरीका है ये, तो अपन ने थोड़ी कठिन चर्चा कर ली। देखो, हम रोज एक गिलास दूध में चार चम्मच शक्कर डाल के पीते हैं, ठीक है, हमारा रोज का काम है। लेकिन आज हम संयम धारण करना चाहते हैं, आज हम दो ही चम्मच डालेंगे, यही हमारा संयम। ये क्या कठिन है क्या? हमें रोज मां 10 कटोरियों में 10 प्रकार की सामग्री लाकर के रखती है, ये सब्जी है, ये दाल है, और ये फलाना, और ये 10 प्रकार की। आज मेरा संयम है 9 में काम चलाऊंगा, एक निकाल के अलग रख दू, यही मेरा संयम। मैं दिन भर में 5 जोड़ी कपड़े बदलता हूं, मैं आज तो 2 ही जोड़ी बदलूंगा, ये मेरा संयम है, ये नियंत्रण है। बस इसका ही नाम संयम है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दोनों प्रकार का संयम का पालन करना, जिससे जीवों की हिंसा अधिक होती हो उस काम से अपने को बचा लेना, और जिससे हमारे इंद्रियों की लोलुपता बढ़ती हो उससे दूर हो जाना, इसी का नाम इंद्रिय संयम और प्राणी संयम है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हमने इसको हवा बना लिया है। हम रोजमर्रा के जीवन में ऐसी छोटी छोटी सी चीजें अपनी सामर्थ्य के अनुसार और उसमें प्रसन्नता महसूस करें कि आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मैंने ये चीज नहीं करी। अभी अभी एक बहन आई थी, तो उन्होंने 5 दिन का तो मेरे से लिया ही था कि अकेला जल लेकर के और करने की भावना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोज रोज लेते जाना, जैसा आप कहेंगे वैसा। आज आके उन्होंने कहा कि हम अब सोचते हैं कि 5 दिन और ऐसे ही चलाएंगे, बताइएगा। और अगर पहले दिन और सामर्थ्य गड़बड़ा जाती, और प्रसन्नता पूरी है, धर्म ध्यान पूरा कर रहे हैं, मैंने कहा ठीक है, फिर भी आप 5 दिन अगले एक एक दिन मेरे से पूछ करके लीजिएगा कि हाँ आज काम चल गया, प्रसन्नता है, कल फिर ले लूंगा, इकट्ठा नहीं लो, कर लिया कि नहीं कर लिया। मुश्किल से वो मेरे ख्याल से 30 साल की भी नहीं होगी, मुझे तो ऐसा लगता है, इतनी छोटी सी उम्र में भी व्यक्ति और बहुत आसानी से, लेकिन क्रम क्रम से और पूरी प्रसन्नता के साथ में अगर इन चीजों को, संयम को धारण करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारा अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन है, हमारा अपना आत्मानुशासन है, इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। डेली लोग संयम धारण कर पाते हैं जिनका आत्मबल बढ़ा हुआ है, या कि जो संयम धारण करते हैं तो उनका आत्मबल बढ़ जाता है, बाहर से संयम धारण करने से भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं समझना कि बाहर से संयम धारण करेंगे तो अंतरंग में कुछ नहीं होगा, नहीं, अंतरंग में आत्मबल के साथ में संयम धारण करें, और जितना जितना संयम धारण करेंगे उतना और अधिक आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। बहुत अच्छा हाथी था, बहुत सुंदर हाथी था, और उसके जोड़ का कोई हाथी नहीं था। सारे राजाओं की इच्छा होती थी कि उस हाथी को वो प्राप्त कर लें, लेकिन कौशल नरेश को अपने हाथी से इतना प्यार था, और हाथी को भी इतना प्यार था कि वो कहीं नहीं जाता था। लेकिन बुढ़ापा किसको नहीं आता, सबको आता है। पूरी जिंदगी कौशल नरेश बड़ी बड़ी युद्ध जीतने के लिए उसी हाथी पर बैठ के गए और वापस लौटे, लेकिन अब हाथी इतना कमजोर हो गया कि उससे अब खुद अपने भोजन को इकट्ठा करने में भी मुश्किल होने लगी, पानी पीने जाना नदी के किनारे मुश्किल मालूम पड़ने लगा। एक दिन जब नदी के किनारे वो पानी पीने गया, तो वहां की दलदल में वो फंस गया। जितने अधिक कोशिश करता निकलने की, उतना और अधिक धसता चला जाता था। जीवन में भी ऐसा ही है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संयम धारण नहीं किया होगा, आखिरी समय में जितनी इंद्रियों की लोलुपता बढ़ती है, वो फिर संयम धारण करने नहीं देती है। जितना सोचते हैं कि बस, जैसे कि लोगों की धारणा है ना कि क्या बचपन में तो ऐशो आराम करना चाहिए और खूब मस्ती करना चाहिए, यंग एज में तो और ज्यादा करनी चाहिए, बुढ़ापे में करेंगे फिर संयम यम धारण करेंगे, ऐसा तो बुढ़ापे में तो और अधिक इंद्रियों की आसक्ति बढ़ती है। जितना संयम धारण करने की कोशिश करते हैं, उतने दलदल में और फंसते चले जाते हैं, जैसे वो हंसती, और सामर्थ्य हो गई थी कम तो और अधिक धस गया, बाहर निकालने की कोशिश की, जंजीरें बांध करके खींचने की कोशिश की गई, लेकिन इतना विशाल काय हाथी और दलदल से बाहर नहीं आ सका। राजा बहुत उदास है, दूर खड़ा हुआ है, क्या करे, सारे उपाय कर चुके हैं, कोई उपाय कारगर नहीं होता है। पुराने महाबत को बुलाओ, बहुत पुराना महाबत जो खुद वृद्ध हो गया था, जिसने तो अब राजमहल छोड़ करके जंगल में झोपड़ी बना के रहने लगा था। राजा ने उसे बुलाया, महाबत आया। राजा ने कहा कि हाथी फंस गया है दलदल में। उसने कहा करना क्या है, करना यह है कि उसे निकालो। उसने कहा देखता हूं। जाकर के देखा तो वाकई में दलदल में फंसा हुआ था। उसने आवाज दी कि कोई गुंजाइश है कि नहीं। जैसे ही उसने आवाज दी तो महाबत की आवाज सुनकर के वो चौकन्ना हो गया। उसे तो आज तक महाबत ने जो आवाज दी है वो चौकन्ने होने के लिए दी है, इसलिए वो उसकी आवाज सुनते ही सा चौकन्ना हो गया। महाबत ने कहा कि बहुत गुंजाइश है, अभी इतना शिथिल नहीं हुई है उसकी चेतना, और जिसकी चेतना शिथिल नहीं हुई है वो शरीर के शिथिल होने पर भी संयम धारण कर सकता है, ये ध्यान रखना, और जिसकी चेतना शिथिल हो गई उसका हट्टा कट्टा शरीर भी और धीरे धीरे मरण की तरफ चला जाए। उस महाबत ने कहा कि गुंजाइश है, चेतना अभी जागृत हो जाती, मेरी आवाज सुन करके जैसे मैं पहले ललकारता था और आवाज देता था तो जागृत होकर के देखने लगता था, ऐसी अभी भी देखा है, गुंजाइश है, लाओ नगाड़े लाओ, वे जो युद्ध के स्थान में बजाए जाते थे। राजा ने कहा कि क्या करते हो, मजाक करते हो, वो इतने तीन दिन से भूखा प्यासा और उसमें फंसा हुआ है और तुम कहते हो कि बाजे बजवाए जाएं। उसने कहा कि मैं जैसा कर रहा हूं राजन वैसा ही करो। युद्ध के बाद आए और एक साथ जो है बिगुल बजने लगे, और जैसे जैसे बिगुल बजते जाते थे वैसे वैसे हाथी जो है वो झूमता था और पीछे, वो कहता था पीछे हट, और वो पीछे हटता चला जाता था, हटता चला जाता था, कहां दलदल है, और सारे दलदल को पार करके और वो एक कमजोर सा दिखने वाला बूढ़ा हाथी और झूम करके बाहर निकल के आ गया। और हमारे सामने अगर कोई संयमी व्यक्ति और संयम की बुगुल बजाता है तो हमारी चेतना में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता है, हमारे भीतर कोई आत्मबल प्रकट नहीं होता है, इसके मायने हमारी चेतना कितनी सोई हुई है। आज हम संयमी को देख करके अपने जीवन में स्वयं संयमित होने का कोई अगर उद्यम ना कर सके तो हमसे ज्यादा कमजोर और कौन होगा। अपने आत्मबल को जागृत करना चाहिए, जिसका आत्मबल जितना जागृत होता वो उतना संयम लेता। जो लोग कहते हैं कि क्या करना सौगंध ओगंध लेकर के, कमजोर लोग सौगंध लेते हैं, मैं सोचता हूं कि कमजोर लोग सौगंध नहीं लेते, उन्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। जब जब भी हमारे मन में कुछ भला करने का विचार आवे उसी क्षण संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, संयम हमारे भीतर संकल्प की शक्ति को पैदा करता है, संयम हमारे जीवन को अनुशासित तो करता ही, हमारे आत्मबल को बढ़ा करके हमारे, आज हम कहते हैं कि हमारा विल पावर कमजोर हो गया, क्यों, हमारा जीवन संयमित है ही नहीं, विल पावर कमजोर होगा तो क्यों नहीं होगा, हमारे अपने इंद्रियों और मन पर हमारा कोई कंट्रोल रहा ही नहीं है। इसलिए भैया अपने जीवन में छोटे से छोटा व्रत, छोटे से छोटा नियम लेने की कोशिश करनी चाहिए कि आज दिन भर देखूंगा कि मैंने जो सोचा है वैसा कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि विनोबा अगर सोचते थे कि 5 मिनट सोना है तो 5 मिनट सो करके और बिल्कुल प्रसन्न होकर बाहर निकल के आ जाते थे, मैं आज भी दंग रह जाता हूं, मैं आज भी वैसा करने की चेष्टा करता हूं, थोड़ा बहुत तो कर पाता हूं, कि अगर मैं सोच के सोऊं कि मुझे 3 बजे उठना है तो 3 बजे मैं 5 मिनट पहले, कौन बिना अलार्म के और मुझे जगा देता है, वो हमारे अपने अंतरंग की शक्ति है जो जगा देती। क्यों नहीं हम ऐसा तय करते, क्यों नहीं हम ऐसे संकल्प करते हैं कि हमें ऐसा करना है। और संकल्प जैसे ही हम लेते हैं वैसे ही हमारे जीवन में संयम और हमारे जीवन में विश्वास जागृत हो जाता है। और तीसरी बात, हमारे अपने पुराने खोटे संस्कार अगर तोड़ना हो तो संयम बहुत मदद देता है। संयम के मायने ही है पुराने संस्कारों को तोड़ना। भर्तृहरि हुए हैं जिन्होंने पहले श्रृंगार शतक लिखा और बाद में जब वैराग आया तो इतने विरक्त हो गए कि वैराग्य शतक लिखा मुनि बन गए थे। और जब वे एक दिन ध्यान में लीन थे तब अचानक देखा कि कोई व्यक्ति इस रास्ते से गुजरा है, शायद हीरे का व्यापारी होगा और उसका एक हीरा सामने गिर गया है। भर्तृहरि को एक बार मन में आया कि कितना वेश कीमती हीरा है। साधु बनने के बाद भी उनका मन क्षण भर को उस हीरे को कीमती मान बैठा, जबकि वो धूल से ज्यादा कीमती नहीं है। पर फिर भी पुराने संस्कार, राजा महाराजा थे वो, पुराने संस्कार की ये इतना बेश कीमती हीरा मेरे राजकोष में होता तो कितना श्रेष्ठ होता। ऐसा मन में विचार आया और उतने में जो है दोनों तरफ से दो घुड़सवार एक साथ आते हैं और दोनों की दृष्टि उस पर पड़ती है, और दोनों की दृष्टि हीरे पर पड़ती है और फिर एक दूसरे पर दृष्टि जाती कि उठाओ देखें कौन उठाता है। ठन गई दोनों में, तलवारें निकल गई, पहले मैंने देखा हीरा, वो कहता पहले मैंने देखा हीरा, और ये भर्तृहरि ध्यान में लीन वहीं पर और देख रहे हैं कि क्या घटित होने वाला है। आंख मूंद लेते हैं, वो जान जाते हैं कि क्या घटित होने वाला है इतने से हीरे के पीछे, और वो ही घटित हुआ कि दोनों के सिर उसी हीरे के पास पड़े हुए हैं। भर्तृहरि और अधिक ध्यान में लीन हो जाते हैं कि अरे ये है संसार, अगर मैं जरा भी उस क्षण चूक जाता तो मेरी भी यही स्थिति होती, मेरा असंयम मेरे मरण में कारण बन जाता। इन दोनों का असंयम आज इतने से हीरे के प्रति जिस पर मन डूल गया है, भैया संभव है कि अगर हम अपने जीवन में संयम धारण करें और फिर कभी मन डोले तो किन क्षणों में किस वैराग से भर करके संयम धारण किया था उसको याद कर लेना, पुराने संस्कार टूटने में देर नहीं लगेगी। आचार्य महाराज ने दीक्षा के बाद यही बात कही थी कि हमेशा आज का दिन याद रखना कि किस वैराग से भर करके और पूरे घर परिवार को छोड़ करके इस रास्ते पर आए थे। संयम हमारे पुराने संस्कारों को तोड़ता है, हमारे पूरे जीवन को व्यवस्थित करता है, और इतना ही नहीं इंद्रियों और मन का सदुपयोग करना भी संयम ही है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दो छोटी छोटी सी घटनाएं हैं, दोनों सुना देता हूं। इंद्रियों और मन को जो विकृत बनाए उन चीजों से बचना और हमेशा अपने इंद्रियों और मन का सदुपयोग करना, आंख से वही देखना जो देखने लायक है, जो मन को गंदा ना करे वही इस जिह्वा में या कि इस मुख से खाने की कोशिश करना, ये हाथ जितनी दूसरे की मदद कर सकें जितना दूसरे को प्यार दे सकें, ये पैर जितना गुरुओं के और भगवान के निकट पहुंच सकें उतना इनका उपयोग करना, मेरे ख्याल से तो यही संयम है। पांचों इंद्रियां हमें उनके दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिली हैं, वे हमें उनके सदुपयोग करने के लिए मनी है। और मन मन को भी जो जो चीजें विकृत करती हैं वैसे विचार मन में जो विकृत हैं उनको नहीं लाना, वैसे लोगों से दूर रहना जिनसे कि हमारा मन विकृत होता है, खान पान में भी उन चीजों से जो हमारे मन को विकृत करती हैं उनसे दूर रहना। शायद इसी को तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अभक्ष का भक्षण नहीं करना। अभक्ष वो सारी चीजें हैं यद अनिष्टम तद वृत्ते, जो मेरे लिए अनिष्टकारी है, मेरे मन को मेरी वाणी को और मेरे शरीर को विकृत करती है, वो चीज मेरे लिए सब अभक्ष है, खाने योग्य नहीं है। क्या इतना हम संयम नहीं कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बहुत छोटी सी घटना है, घटना क्या है, एक साधु जी के पास में एक युवक पहुंचा था और उसने कहा कि बताइएगा कि ये जो आप संयम अयम की बात करते हैं वो कैसे साधा जा सकता है। वो असल में आया था उन साधु जी को बुद्धू बनाने। हाँ, होता है आज का थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है व्यक्ति तो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगता है। हाँ थोड़ी सा भी, मैं तो युवाओं को देखता हूं कि वे अपनी उस पूरी की पूरी एनर्जी का क्या कर रहे हैं, वे अपने उस मन की सामर्थ्य का क्या कर रहे हैं, खोटे विचार करके और अपने उस मन की सामर्थ्य को व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि युवाओं में बहुत सामर्थ्य है और वे चाहें तो अपने जीवन को इतना व्यवस्थित, इतना रेगुलेट कर सकते हैं कि अपने आसपास के पूरे वातावरण को सुगंधित कर सकते हैं, लेकिन वे सुगंध ना फैला करके और दुर्गंध फैलाने में ज्यादा मदद करते हैं। वो युवक पहुंचा और साधु जी से कहता है कि क्या है ये संयम अयम? तो साधु जी ने कहा कि समझना है, तहां समझने के लिए तो आया हूं। साधु जी के पास में लाकर के किसी ने पूड़ियां रखी थी और किसी ने रोटियां भी लाके रखी थी। साधु जी ने कहा कि तुझे संयम समझना है, तो उठा के ला वो सामने जो दर्पण रखा हुआ है। उसने कहा अच्छा, दर्पण ले आया। ये पूरी सबको अच्छी मालूम पड़ती है ना? हाँ अच्छी मालूम पड़ती। रगड़ो जरा दर्पण पर। तो पूरी दर्पण पर रगड़ी तो दर्पण में जो पहले बढ़िया देख रहा था वो और ज्यादा धुंधला और हो गया। तो अच्छा रोटी रगड़ो, रोटी रगड़ी तो जितना धुंधलापन था वो और साफ हो गया। बस अब ये ध्यान रखना है कि जैसे इस दर्पण को जो धुंधला कर देता है वो ही असंयम है और जो साफ कर देता है वो ही संयम है। अब तुम अपने आप डिसाइड कर लो कि क्या ग्रहण करना है, असंयम की तरफ जाना है या संयम की तरफ जाना है। जो मन और चित्त को विकृत करे वो सारी चीजें छोड़ने योग्य हैं और इसी का नाम संयम है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देशभूषण और कुलभूषण जी महाराज का उदाहरण हर जगह आता है, महाराज कई बार उसको सुना चुके हैं। अपने अपने ढंग से हर व्यक्ति उस चीज को समझता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज मुझे जो लगती है वो यही कि क्षण भर को यदि हमारे परिणाम डोल जावे तो आत्मग्लानी से अगर मन भर जाता है तो वो आत्मग्लानी हमें संयमित करने में मदद करने वाली है। दोनों भाई पढ़कर के घर ही तो लौटे थे और अपनी ही बहन को देख करके अपरिचित होने की वजह से सोच बैठे थे कि विवाह इसी से करूंगा, और जिस क्षण ये मालूम पड़ता है, और इतना ही नहीं ये सोच चुके थे कि अगर छोटा भाई कहेगा कि मैं करूंगा तो बड़े भाई ने तलवार पे हाथ रख लिया था और छोटे भाई ने भी मन में सोच लिया था कि अगर भाई बड़ा जिद करेगा तो मेरी तलवार एक ही बार में उसे अपने रास्ते से हटा देगी। इतना सब खोटा विचार आने के बाद जब मालूम पड़ता है आरती उतारते समय कि ये मेरी ही बहन है, तब दोनों का सिर नीचा हो जाता है, तलवार क्या मुकुट और हार भी फेंक करके और जंगल के रास्ते पर निकल जाते हैं कि धिक्कार है हमारे इस मन को जिस पर इतना भी काबू नहीं है, जो अपने हित और अहित को नहीं पहचानता, इतना विवेकहीन विवेक शून्य मन है। भैया हम सबको भी इस बात का जरूर ध्यान आना चाहिए कि कम से कम अपने जीवन को इतना तो संयमित बनाए कि जिससे हमारा और दूसरे का अहित हो, वो चीजें तो ना करें जिससे अपना और दूसरे का कल्याण होता है, वही चीज करें। इतना तो अपने जीवन को संयमित कर लें तो कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं है। आज संयम के दिन जिससे जितना बने उतना अपने जीवन को संयमित करने की कोशिश करनी चाहिए। एक मिनट के लिए भी अगर मैंने अपने जीवन को संयमित किया है तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज आप पूरे दिन भर खाना नहीं खाएंगे तो आप बहुत संयमी हो जाएंगे, नहीं, अगर आपने अपने मन को एक मिनट के लिए भी अशुभ में जाते से बचा लिया है वही संयम है। और ऐसा अगर धीरे धीरे हम करते चले जाएंगे, इतना ही कर लो आज के दिन। अगर मेरे से पूछते हैं आप तो है आप में सामर्थ्य, तो देखना चाहता हूं कि पूरे जीवन भर इतनी सौगंध ले लो कि किसी के यहां पर जाकर के सामूहिक रूप से रात में नहीं खाऊंगा। इतना भी कर लो, बहुत हो जाएगा। हम अपने घर में चुपचाप बैठ के अपने एक कमरे में, हो सकता है कि रात में भूख लगेगी तो खा लेंगे, लेकिन हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हम रात में सामूहिक रूप से तो भोजन नहीं करेंगे। इतना भी क्या निर्णय नहीं ले सकते हम? नहीं, मैं मुझे कोई इस तरह के कंफर्मेशन, मुझे कंफर्मेशन नहीं, कंफर्मेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे। मुझे इन चीजों, ये प्रोपोगंडा मानता हूं मैं इसको, कि सबके यहां पर सभा में हाथ उठा लिए और बाद में जो करना है सो करते रहो, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने मन में तय कर लीजिएगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हाथ उठाएं और दोनों हाथ उठा करके मुझे दिलासा दिलाएं। नहीं, अपने मन को दिलासा दिलाओ कि कभी कभी नहीं करूंगा। इतना छोटा सा काम बहुत बड़ा नहीं है। आज बुफे सिस्टम है और सब लोग जो है उस बुफे सिस्टम का समर्थन कर रहे हैं और खड़े होकर के जूते बांध के और उसी विदेशी सभ्यता के मुताबिक और भोजन कर रहे हैं, जिसमें शुद्धि अशुद्धि का कोई विवेक नहीं रहता है, और वो भी रात में। दिन में भी लोग बुफे सिस्टम से कर रहे हैं और वो सारा का सारा रात में बनता है, उसमें भी हिंसा होती, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। क्या हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि हम इस तरह के सामूहिक भोज में रात्रि में नहीं कम से कम खाएंगे, या रात्रि में बना हुआ होगा पता कर लेंगे कि ये सारी रात बनता रहा है, हमने देखा है, गंज मसौदा में रह करके देखा है, 10 बजे शाम से बनता था और सुबह 4 बजे तक बनता रहता था और सुबह से 8 बजे परोसा जाता था, सारी रात बना है और कीड़े उसमें गिरते चले जाते थे और उससे झारे से निकाल निकाल करके ऐसे फेंक देते थे और उसी में सारा तलता हुआ चला जाता था। आपने नहीं देखा, गौर से देखिएगा इन सब चीजों को। इतना अभक्ष्य भक्षण करके और हम कौन से संयम की बात करते हैं, कौन से आत्मानुशासन की? हो सकता है कि आपने 10 लक्षण पर्व में और किसी ने मीठा नहीं खाया होगा, किसी ने दूध नहीं पिया होगा, किसी ने सब्जियां नहीं खाई होंगी, जो भक्ष्य पदार्थ है उनको छोड़ने में कोई बहुत बड़ी दिलेरी नहीं है। जो अभक्ष्य पदार्थ है उनको तो छोड़ा नहीं होगा अभी, और बाजार का भोजन बिल्कुल भी अभक्ष्य है, मैं तो कहता हूं छूने लायक भी नहीं, खाने लायक तो बहुत बात की चीज। वहीं पर मांसाहार बन रहा है, वहीं पर शाकाहार बन रहा है, कौन सा उसमें धर्म है बताइएगा? वहीं अंडे बिक रहे हैं और वहीं पर हम जाकर के उस होटल में दूध खरीदते हैं। अगर हम छोड़ सकें तो इन चीजों पर हमें विचार करना चाहिए कि हमें जैन होने के नाते रात्रि में सामूहिक रूप से भोज नहीं करेंगे। आपको याद है शहाबुद्दीन ने जब एक बार इंदौर के अंदर, मैं शायद इस चीज को सुना चुका हूं लेकिन आज फिर से रिपीट करता हूं, शहाबुद्दीन ने सामूहिक मांसाहार का आह्वान किया था इंदौर के अंदर और टनों टन उस दिन जो है मांस का भोज दिया जाने वाला था, लेकिन सिर्फ जैन समाज के 5 रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे और उन्होंने निवेदन किया था कि कम से कम आप ऐसा ना करें, सामूहिक रूप से ना करें, आप इंडिविजुअल करते हैं हमें कोई वो नहीं है, वो आप जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर आप सामूहिक ना करें। क्योंकि वे डेपुटेशन जैनियों का था जो उनके बहुत बड़े बोहरा समाज के शहाबुद्दीन हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि आप जैन लोग, अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग हमारे पास आए हैं, इसलिए हमारा सारा प्रोग्राम तय होने के बाद भी आपकी इज्जत करते हुए इस सारे प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं, लेकिन एक चीज आपसे जरूर चाहते हैं कि इसी मंच से आप घोषणा करके जाइए कि आप भी जैन होने के नाते सामूहिक रूप से रात में भोजन नहीं करेंगे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, आप ताली मत बजाइएगा, इसलिए नहीं बजाइएगा क्योंकि रोने का मन है, रो लेने का मन है, क्योंकि उस समय उन्होंने अपने सामूहिक मंच से घोषणा कर दी थी कि हमारे यहां कोई सामूहिक रूप से और मांसाहार नहीं करेगा, लेकिन हम सामूहिक रूप से रात में नहीं खाएंगे ये घोषणा नहीं कर पाए थे उनके मंच से। वे 5 लोग सिर्फ ये कह के आ गए थे कि हम 5ों लोग रात में सामूहिक रूप से शामिल नहीं होंगे किसी भोज में, बाकी की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम संयम की बात करें? हमारे जिब्बा पर हमारा इतना सा कंट्रोल नहीं है, हम घर पर आकर के चुपचाप नहीं खा सकते हैं, हम समूह में सबको दिखाएंगे कि हम जैन होने के बावजूद भी रात में खाते हैं, वो दिन लग गए, वो 16वीं शताब्दी की बात है जब लोग अंधेरा रहता था इसलिए रात में नहीं खाते थे, अब तो हम ट्यूबलाइट में खाते हैं, बढ़िया रोशनी में खाते हैं। इस रोशनी में, दिन के उजाले में भी कितनी जीव राशि उत्पन्न होती है, फिर तो रात में तो छोड़ दीजिएगा, अनंत जीव राशि उसी में मिक्सअप हो जाती, इसके बाद भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करने से बेटर है अपनी संस्कृति को बचाने का कोई उपाय करना, और संस्कृति तभी बचेगी जब हमारे जीवन में हमारे संस्कार आएंगे, हमारे युवाओं में आएंगे। हमारे युवा आज सत्य वचन का त्याग तक नहीं कर पा रहे हैं, हमें इस बात के कहने में शर्म लगती है। आज भले ही थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, पर मैं आपसे, मैं ऐसी बात कभी भी खुले मन से नहीं कहता, पर पता नहीं क्यों आज मेरे मन में आया कि अगर इसी तरह से चलता रहा, हम बहुत प्रेम से सारी बातें सुनते रहे और अपने जीवन में कुछ भी हमने अंगीकार नहीं किया, तो धीरे धीरे आके हमारी नई पीढ़ी और इसी तरह से और पतित होती चली जाएगी। नैतिक पतन तो हुआ ही है, धार्मिक पतन की तो कोई बात ही नहीं है, नैतिक पतन भी हुआ है हमारा, हमें उस पर जरूर विचार करना चाहिए। यह तो हमारे कुलाचार में शामिल था कि जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन किए बिना अपना कार्य शुरू नहीं करेंगे। सांसारिक कार्य शुरू तब करेंगे जबकि सबसे पहले आके जिनेंद्र भगवान की छवि का दर्शन कर लेंगे, और रात में हम सामूहिक रूप से